नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे विश्वास मत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को विस्तारित करने का किया फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में बढ़ोतरी, कई भागों में गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा में विपक्षी के विरोध के कारण पास नहीं हो सका है। विपक्षी दलों द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कारण महिला आरक्षण विधेयक 2/3 बहुमत पाने में असफल रहा। लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे।
पीएम आज 8:30 बजे इस विषय में बात करेंगे, देश की जनता से बोलेंगे, जितनी भी नारियां हैं उनको जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी।
नारी वंदन अधिनियम से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष के महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल मिलकर देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। इस दौरान एनडीए की सभी महिला सांसद और महिला मंत्री राज्यवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण पर एनडीए के प्रयासों की जानकारी देंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने पर कहा कि कांग्रेस का रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ प्रतीत होता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि देश भर की महिलाएं बड़ी उम्मीदों से देख रही थीं।
कांग्रेस महिला विरोधी है और कांग्रेस ने बहुत ही गलत किया है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। 2029 में उनको आने से रोका है, जिस तरह से इन्होंने विरोध किया है आने वाले समय में महिलाएं कहीं का इनको नहीं छोड़ेंगी।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पेश किया था।
नारी शक्ति बिल जिस तरह से गिरा, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो 50% आबादी महिलाओं को है, उनको सशक्त करने के लिए 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने देने का प्रावधान लेके बिल आए और कांग्रेस पार्टी उसको गिरा के खुश हो रही है।
इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दावा किया कि विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के संघीय ढांचे को बदलने और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास को विफल कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की सच्ची वकालत के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और ये केवल राजनीतिक दावपेच से हासिल नहीं की जा सकती है।
कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टिप्पणियों की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रसाद ने कहा कि परिसीमन के बिना लोकसभा या विधानसभा में सीटों से संबंधित कोई संशोधन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जनगणना में काफी समय लगता है, इसलिए परिसीमन पिछली जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। संसद के विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम से संबंधित 3 संशोधन विधेयक बहुमत के अभाव में लोकसभा में पारित नहीं हो सके। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र भी समाप्त हो गया। विशेष बजट सत्र की कार्यवाही के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के साथ हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उससे भारत के सामने आ रही चुनौतियों पर दोनों सदनों में बयान दिया था। इसके अलावा लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। पहले यह बजट सत्र इस महीने की 2 तारीख तक चलना था, लेकिन महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए 3 दिन की विशेष बैठक के लिए विस्तारित किया गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने से संबंधित 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दिन विश्वास मत सदन में पेश करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा की विशेष बैठक बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। श्री चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। श्री कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर इन नेताओं के बीच चर्चा हुई है। राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा श्रेणी जेड प्लस से बदलकर जेड श्रेणी कर दी गई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा के उपसभापति पद पर तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही और अधिक प्रभावी, संतुलित तथा सार्थक बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की जगह 60% की दर से डीए मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह निर्णय इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा।
केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीज। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए, 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉइज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के।
श्री वैष्णव ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक विस्तारित करने का निर्णय किया गया है। इससे ग्रामीण सड़कों के लक्षित उन्नयन को सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि PMGSY 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीज की स्कीम हो गई। पूरे प्रोग्राम में अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 10,000 से अधिक ब्रिजेज इसमें बने ग्रामीण क्षेत्रों में, 7 लाख से ज्यादा जो बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट इंफ्रा पॉइंट्स होते हैं कम्युनिटी के, वो सब इससे कनेक्ट हुए।
हज यात्रा 2026 के लिए राज्य के हज यात्रियों का पहला जत्था आज नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डे से रवाना हुआ। इस वर्ष बिहार से 2,552 लोग हज के मुबारक सफर पर जा रहे हैं। बिहार हज कमेटी के CEO राशिद हुसैन ने बताया कि 5 मई तक हाजियों का जत्था मदीना जाएगा, जबकि 6 मई से 20 मई तक जाने वाले यात्री जिद्दा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि हज यात्रा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आज विश्व धरोहर दिवस है। यह दिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की विविधता, संवेदनशीलता और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट।
विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य वैश्विक धरोहर स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये स्थल केवल किसी एक देश की संपत्ति नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर होते हैं। भारत में भी अनेक विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो के मंदिर, हम्पी के स्मारक, अजंता एलोरा की गुफाएं, सुंदरबन डेल्टा और कितना ही कुछ। ये स्थल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत स्मारकों, पुरावशेषों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक स्थलों से सुशोभित है। इनके संरक्षण के लिए पिछले एक दशक में नए सिरे से काम किया जा रहा है। इस कड़ी में पर्यटन, स्थानीय आजीविका और संस्कृति से जुड़ी पहले शुरू की गई हैं। विश्व धरोहर दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संजोकर रखना चाहिए। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर प्रबंधक समिति के पदाधिकारी, बौद्ध विद्वान और भिक्षुओं ने भाग लिया। पटना स्थित बिहार संग्रहालय, खुदाबख्श केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थापित भारतीय रेल बिजली कंपनी बीआरबीसीएल के सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया है कि 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले एक और इकाई की स्थापना की जाएगी।
पता चला है कि 800 मेगावाट का एक यूनिट और आ सकता है, तो उसी दिशा में हम लोग अभी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा जो करीब 5-6 महीने लगेगा। इस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे 800 मेगावाट का यूनिट पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन प्रिलिमिनरी स्टडी से लग रहा है कि यहाँ पे 800 मेगावाट का एक यूनिट और आर्ट हो सकता है।
पछुआ हवा के प्रभाव के कारण राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना है। इधर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लू और गर्मी से बचने के लिए लोगों से आवश्यक उपाय करने की अपील की है। प्राधिकरण ने कहा है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, खाली पेट बाहर ना निकलें और साथ में पानी अवश्य रखें। शेखपुरा जिला प्रशासन ने शेखपुरा में स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की है। अंत्योदय की योजना के तहत ईंट भट्ठे में काम करने वाले लोगों और उनके बच्चों को सहायता दी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे विश्वास मत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को विस्तारित करने का किया फैसला। और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में बढ़ोतरी, कई भागों में गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।